فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ایسی خوبصورت باتیں کیا کرو جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں وہ لوگ وہ باتیں کہا کریں۔ پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں خرم علی گردیزی۔
بہت بہت شکریہ، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی، اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں بھی، اور جیسے کہ حسن نے کہا کہ تہران اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگ ایک خوبصورت سا پروگرام لے کے۔ ہفتے کا موضوع جو ہمارا حسن چل رہا ہے، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے، وہ ہے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے حسن کہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن اسی وقت دوسرا جو ہے وہ ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے، یہ بڑی جو ہے عجیب سی حالت ہے۔
بالکل، یقیناً اسی طرح ہے، اور بہرحال اس کے بارے میں بہت سارے ان کا خیال ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ ایک اور جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کا یعنی ضرور نظریہ جاننا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے جو بہت ہی قریبی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ہم جواب کے منتظر رہیں گے، لیکن ایک افسوسناک خبر ہے وہ ہمیں سنانی ہے۔ وہ یہ کہ آج جو ہے ہم لوگوں کے پاس ٹیبلٹ نہیں ہے، کیونکہ ایک تکنیکی مسئلے کی وجہ سے کچھ یعنی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ ہم
پہنچ نہیں سکا
ٹیبلٹ نہیں رکھ سکتے یہاں پہ۔ انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، لیکن ابھی چند دن اور ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ضرور اپنا نظریہ بتائیے، اور ہم لوگوں کو بے حد خوشی ہوگی آپ کے کمنٹس پڑھ کر، یا اگر آپ آ کر اپنے پیج پر آ کے ایک لائک کریں گے۔ اپنے پیج سے مطلب یہ نہیں وہ جو آپ نے بنائے فیس بک پہ، وہ نہیں جو ہم لوگوں نے بنائے، وہ بھی آپ ہی کا پیج۔ بالکل،
اور حسن میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے،
یقیناً
اور بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے کہ اس دن ہماری ایک کالر ہیں اور وہ بات کر رہی تھی، مجھے نام ان کا بھول گیا، عابدہ صاحبہ میرے خیال سے تھیں جی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ہے آنکھ میں موتی آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے وہ جو ہے اپنے ہاتھ پھونک کے جو ہے آنکھ کو ملک کرتی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میری جو ہے آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ بتائے
فیس بک پر۔ ایسے یعنی راہ حل جو ہیں قرآنی راہ حل، تو یقیناً وہ سب کے لیے بہتر ہوں گے۔ آج ہم نے خرم بہت ہی زبردست چیزیں تیار کی، اور شہد کے خواص کے بعد بارے میں ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو، اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی مزیدار سی چیز ہے، بہرحال آپ نے ریشم کے کپڑے دیکھے ہوں گے، اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے آپ کو، کافی دلچسپ ہے۔ تو آج کا پروگرام آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور چلتے ہیں سب سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، جس کے دوران آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سے آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں مختلف ذرائع سے۔ جی ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی، اور 6:38 اس وقت ہو رہے ہیں جو یہاں کے اسٹوڈیو کی جو گھڑی ہے اس کے مطابق، اور تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو ایک مہمان جوائن کریں گے، بتائیں گے خرم بھائی ان کے بارے میں۔
ڈاکٹر اسد اللہ ارسلان جو فزیوتھراپسٹ ہیں، اور انہوں نے اس میں جو ہے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، اور جو ہے بارہ 3-4 ڈگریاں ان کے پاس ہیں فزیوتھراپی سے متعلق۔ انہوں نے جو ہے آج ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ بچے جو ہے وہ لیٹ کے پڑھتے ہیں، کچھ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کچھ صوفے پہ بیٹھ کے، کچھ بیڈ پہ بیٹھ کے، اور پھر اس کی وجہ سے کبھی کبھار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کمر میں درد یا گردن میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے۔
بہت ہی زبردست موضوع ہے، اور ہمارے خیال میں ہر روز کسی نہ کسی گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اور اتنا وقت ہم آپ کو دیتے ہیں، اور اپنے اسد بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں یہاں پہ اسٹوڈیو میں۔ پروگرام صبح زندگی میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کو لائے ایک اور ایران کے شہر میں، جہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پرانی جو تہذیب تھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوئی، اور وہ ہے ہمدان شہر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ خود ابن سینا مفسر قرآن بھی تھے اور مذہبی امور میں بھی بہت آگے بڑھ چکے تھے اور ان کی بہت زبردست تحقیقات رہی ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں چاروں طرف اس عمارت کے قرآنی آیات لکھی گئی ہیں اور اس کے ذریعے بھی دکھایا گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ ویسے قرآنی آیات ہیں, بعض جگہوں پہ فارسی میں ہی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے. تو اس میں یہ خود دکھاتا ہے کہ کس حد تک ایک انسان جو ہے اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہے. ابن سینا کے قبر پہ اب تک دو پتھر لگ چکے ہیں, ایک تو یہ والا ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا جو اس وقت قبر پہ موجود ہے. یہ سب سے پرانا پتھر تھا, جب ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ بنوایا گیا تھا ایک, اور ایک چھوٹا سا بوقا تھا ان کے قبر پر, لیکن اب جو ہے بہت ہی عظیم الشان ایک عمارت کھڑی کی گئی ہے اس پر. ابن سینا کے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, مختلف ان کے یعنی شخصیت کے پہلو تھے. ایک طرف تو بہت بڑے طبیب تھے, دوسری طرف بہت مفسر قرآن تھے, اور تیسری طرف انہوں نے فلسفے میں بہت نام کمایا. اور انہوں نے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کے بزرگ تھے یعنی جو تاریخی ادوار سے یعنی ایرسٹوسیٹس سے لے کر مختلف تاریخی جو شخصیات تھیں ان سب کے اس پر مطالعہ کیا, کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 بار ایک کتاب کو پڑھا, تب جا کے ان کو اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا, تو فارابی کی پھر کتاب پڑھی تب جا کے ان کو سمجھ میں آیا. ایک بہت ہی اہم کتاب ان کی جو ہے جو لکھا ہے کہ منطق کے سلسلے میں یعنی جو استدلالات کے سلسلے میں ہے وہ ہے الشفا. یہاں پہ اس کا ایک نسخہ موجود ہے, ان کا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ کتابیں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیں ان کی تمثیل عرفانی یعنی عرفان. اور اس کے علاوہ جو میں نے اس دن اگر آپ کو یاد ہم نے بتایا تھا الادویت القلبیہ, یہ جو مختلف کتابیں ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لحاظ سے کہ طبی اور علم طب کے بارے میں وہ یہاں پر موجود ہیں. کوشش کی گئی ہے کہ بعض نسخی خطی بھی کتابیں جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے. اور ایک اور چیز میں جو اب دکھانا چاہوں گا آپ کو وہ ہے کہ وہ شعر میں بھی یعنی شعر کہنے میں بھی ایک خاص مہارت رکھتے تھے. وہاں پہ سامنے اگر آپ دیکھیں اوپر وہاں پہ اشعار ہیں خود ابن سینا کے لکھے ہوئے کہ اسفار گل گل سیاہ تو او جزوحل کردم ہمیں یہ مشکلات عالم روحل بیرون جستم ز قید ہر مکروحیل ہر بند گشودہ شد مگر بند اجل, کہ کالے پھول سے لے کر خلا تک ہم نے ساری مشکلات کو حل کر دیا اور ہر مکر اور ہیلے سے میں باہر نکل آیا اور اس کو میں نے کھول دیا لیکن بند اجل کو میں کھول نہیں پایا اور اس نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا. یہ یعنی خود ایک بہت عظیم شاعر بھی تھے, یعنی خود یہ چیزیں دکھاتی ہیں. اور اس میں ہم لوگ کو واقعی درس لینے کا مقام ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ آئیں آپ کو ایک خالی ایک عمارت دیکھے لیکن سیکھنے کو یقیناً بہت کچھ ملے گا. یہ حمیدان کی وہ جگہ ہیں جو یقیناً گھومنے میں بہت مزہ آئے گا. پھر سے آپ کو حمیدان شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں, انشاءاللہ باقی پروگرام بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. ابن سینا ایک بہت عظیم فن کے ماہر تھے اور وہ تھی طبابت. اور اس سلسلے میں یہاں پہ یعنی اس میوزیم میں ان کی قبر کے ساتھ ہی ایک جگہ کو منحصر کیا گیا ہے اس پر کہ مختلف چیزیں صرف ان کے دور کی نہیں بلکہ جو علاج کے لیے علاج معالجے کے لیے جو استعمال ہوتی تھیں مختلف دور میں حتیٰ اسلام سے قبل جیسے اشکانی دور ہے قریب کہہ سکتے ہیں 3000 سال پہلے وسائل ہوتے تھے علاج معالجے کے لیے, دوائیں رکھنے کے لیے, یہ سب یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی دورے کے اواسط میں انہیں قریب کہہ سکتے ہیں 500 سے 600 سال پرانی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں, بلکہ تھوڑے اور پرانی زیادہ لگ رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں 1000 سال یا 1000 200-300 साल पुराने चीज़ों तक यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाज़ फ़न तबावत के जो ये नुस्खे मिले हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। एक ख़ास चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि मुझे बहुत मज़ा आया कि एक तरफ तो यह है कि यकीनन इलाज करना तबीब के हाथ में होता है, लेकिन इसी में मुख्तलिफ़ तरीक़े जो बताए गए हैं तबावत के अरबी ज़बान में हैं, लेकिन बीच में है कि बिइज़्निल्लाह तआला, यानी खुदा की मदद से ही यकीनन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इलाज हो सकता है। इस पर बहुत ख़ास तवज्जो रखना ज़रूरी है हम लोगों के डॉक्टर्स को भी और हम लोगों को भी। जी नाज़रीन, फिर से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। हमीदान शहर की कई चीज़ें आपने मुलाहिज़ा फरमाई। एक और चीज़ जो अभी आखिर में जो नुक्ता हमने बताया था आपको यानी इस रिपोर्ट में, वो ये है कि अरबी ज़बान में एक ज़माने में ये था कि अरबी ज़बान एक मेयारी और समझिए कि मरकज़ी ज़बान थी, और जिसको भी कोई भी इल्म हासिल करना होता था यानी साइंस से मुताल्लिक जो भी उसको हासिल करना होता था उसको अरबी सीखना या फ़ारसी सीखना उसके लिए ज़रूरी होता था। तो बहरहाल आज हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इलाके की ज़बान सब फिर से एक मेयारी ज़बान बन जाए, ताकि क्योंकि हम लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। ईरान की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ खुसूसन, जिनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन आज दूसरे लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं और हम उन लोगों से इस्तेफादा कर रहे हैं। इसको थोड़ा तब्दील होना चाहिए अगर हम लोग कोशिश करना चाहें। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया सन, बहुत खूबसूरत आपने बात की। बिल्कुल यकीनन थोड़ा सा जो है हमें हाथ पर मारने चाहिए और ख़ुद अपने काम करने चाहिए बजाय इसके कि जो है पैसे दे के खिदमात ली जाएँ। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर असदुल्ला अरसलान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने बताया गर्दन दर्द पढ़ाई के दौरान, पढ़ते हुए मुताले के दौरान जो है गर्दन दर्द या कमर दर्द जो होता है उसके ऊपर डॉक्टर साहब बात करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की।
वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और बहुत बहुत खुश आमदीद आपको कहता हूँ प्रोग्राम में।
बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सेट की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मद्दू किया, और अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाज़रीन हमारे प्यारे नाज़रीन जो हैं वो मेरी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे।
डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम लोग गुफ्तगू की तरफ जाएँ अपनी, दर्द अक्सर बदनों में होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द होते हैं, कभी कम गर्दन दर्द हो रहा है, कभी कमर दर्द हो रहा है, और हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है वो ये है कि पेन किलर खा लिया जाता है और दर्द को खामोश कर दिया जाता है।
जी, ये
सही तरीका है?
देखिए पेन किलर जो है दर्द को आर्जी तौर पर ख़त्म करता है,
ठीक है,
वो उसका हल नहीं होता, उसका वो इलाज नहीं होता,
ठीक है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि मुआलिज उस बीमारी की जो है सही अंदाज में तशखीस दे,
ठीक है।
तो उसके बाद बाज़ का मस्कुलर प्रॉब्लम होते हैं,
ठीक है, पट्ठों
किसी
के।
पट्ठों के प्रॉब्लम होते हैं, वो किसी स्ट्रेच की वजह से होता है, आपका जो बॉडी पोस्चर है जो जिस्मानी साख्त है वो असल हालत में नहीं होती, तो उसकी वजह से किसी भी खास हिस्से पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव आ रहा होता है, तो इस वजह से वो चीज़ होती है। और जब तक हम उस मसले को उस हालत को ठीक नहीं करते तब तक वो जितने भी हम पेन किलर खा लें जब तक उसका असर रहेगा तो आपको जो है वो आराम महसूस होगा, सुकून में होंगे, और जैसे ही उसका एक हाफ लाइफ होता है किसी भी दवाई का और जैसे ही वो खत्म होता है उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा आपको जो है वो दर्द शुरू होता है।
तो ये तो डॉक्टर साहब ने भी फैसला कर दिया, हमारी बात तो आप नहीं सुनते लेकिन डॉक्टर साहब की बात सुन लें कि पेन किलर खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस जो मुश्किल प्रॉब्लम है उसकी जड़ पे जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये जो गर्दन दर्द है ये बहुत आम है, हर घर में इसको देखा जाता है, हर उम्र में देखा जाता है, बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके यहाँ गर्दन दर्द देखा जाएगा, छोटे छोटे बच्चे जो 7वीं 8वीं 6ठी 5वीं के बच्चे जो हैं पढ़ने लगते हैं उनके यहाँ कमर दर्द, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए मौजूदा दौर में साइंसी तरक्की ने हमें बहुत सारे जो है फ़ायदे दिए हैं, लेकिन उसके बरक्स जो है मुआशरती तौर पर जिस्मानी तौर पर बहुत सारे नुकसान भी जो हैं उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो जिस्मानी साख्त है वो इससे बहुत हद तक मुतासर होती है। माजी में इंसान मुशक्कत करता था, मुख्तल तरह के उसको काम काज करने पड़ते थे, उसकी गजा जो थी वो उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं होते थे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि
मसनू ही नहीं थी,
तो वो एक हिफ्जान सेहत के असूलों के तकरीबन करीब करीब थी। लेकिन आज हमारे ऊपर स्ट्रेस है, हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत हद तक जो है मसरूफ़ है। तो इसकी वजह से बहुत मुख्तलिफ तरह की वजूहात की बुनियाद पर जो है इंसान आज कल दबाव का शिकार है। अब आज का हमारा जो है मौजू चूँकि गर्दन दर्द है और इसको हम उसके रबते के साथ जो है स्टूडेंट हैं या दफ्तरों में काम करने वाले और ख़ास तौर पर वो लोग जो कुर्सी पर बैठ कर जो है दफ्तरों में काम करते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। गर्दन जो है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी वो तकरीबन 33 मोहरों पर, उसको वर्टिप्रा कहते हैं, उन पर मुश्तमिल होती
है। छोटी हड्डियां,
छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आपस में मिली होती हैं। ऊपर की जो 7 हड्डियां हैं उनको हम गर्दन कहते हैं। और ये जो 7 हड्डियां हैं इनके दरमियान डिस्क होती है। डिस्क का जो बुनियादी काम है वो ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, उसके जो जायद असरात होते हैं उसको जो है ये जायल करती है। एक तरह से एक मुहाफ़ज़त वाला काम होता है, एक हिफाजत देती है इस हिस्से को।
अच्छा, ये डिस्को डॉक्टर, ये भी कहा जा सके जैसे हड्डियों के दरमियान में तकिए रखे हुए हैं ताकि वो जो वजन है, जो प्रेशर आ रहा है, तो उसको वो जो है एक किस्म का तहम बर्दाश्त कर सके।
एक शॉक अब्जॉर्वर के तौर पर जो है इसका असल काम होता है। इसके इर्द गिर्द जो है लिगामेंट्स होती हैं जो इसको सहारा देती हैं और फिर ऊपर से इसको पट्ठों ने घिरा होता है। तो इसकी एक तबीयी साख्त होती है, तबीयी जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी वजह से कोई भी तब्दीली आए तो वो इस पूरे ढांचे को मुतासर करती है। तो गर्दन दर्द जो है वो भी इसकी मुख्तलिफ वजूहात जो होती हैं, वो आपकी जब सही तरीके से आप नहीं बैठते या काम करते हुए उसको ज़्यादा झुकाते हैं, उसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो घूमते हैं, तो इस वजह से गर्दन के जो है उनका मसाइल का करना पड़ता है।
कब कितना हमें जो है अपने सर को खम करना है, कितना मोड़ना है पढ़ते हुए, क्या इसको कोई आप लोग कोई स्पेसिफिक कोई बताते हैं कि भाई नहीं इतना मोड़ें, इतना ना मोड़ें, 30 डिग्री मोड़, क्या किस
इसको आप जो है सादा से तरीके, एक बुनियादी जो है नुक्ता जहन में ये रखें कि गर्दन की जो पोजिशन है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी उस पर कोई भी गैर मुतवाजन तौर पे दबाव ना पड़ रहा हो। आप जाविये की बात की है, कितना खम करना चाहिए, कितना झुकाना चाहिए, तो आप इसको एक सादा से अंदाज में जो है इसको इस तरह कर सकते हैं कि अपने सामने वाले जो दांत हैं उसके दरमियान में एक पेंसिल रखें जो ज़मीन के मुवाजी हो।
ठीक, अच्छा।
उसको फिर आप जो है गर्दन को खम करें, सही, और कोशिश करें कि मसलन गर्दन जो है आपकी 20 से 30 दर्जे या 20 से 25 जो जाविये है उसको दर्जे उससे ज़्यादा खम ना हो।
ठीक है जी, सही है।
तो ये एक इस हालत में यहाँ तक खम करें तो वो बेहतर है। अब इस तस्वीर में जैसे आप देख रहे हैं कि मसलन वो ज़रूरत से ज़्यादा जो आगे की तरफ जो है खम होके वो कंप्यूटर को देख रहा है, अगर इसी हालत को ये अगर कंप्यूटर के करीब कुर्सी को करें और अपने आप को सीधा करके रखें तो वो जो है उससे काफ़ी हद तक मसाइल जो है हल होते हैं। अब यहाँ पर जो है इसके जो बैक मसल्स हैं पीछे वो स्ट्रेच की हालत में हैं। यहाँ पर आप कुछ सेकंड्स के लिए आप इसमें बैठें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जो है ज़्यादा दौरानी के लिए वहाँ पर बैठेंगे तो वो आप वो जो पीछे वाले जो पट्टे हैं उनको असरात करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इसका जो कंधा है वो आगे की तरफ फोल्ड है। अब कंधे को भी पीछे से जो मसल्स हैं उसके वो पट्टे हैं उन्होंने वो एक खास तरह से घिरा होता है, उसमें खास तरह से उसका जो है वो रब्त होता है, तल्लुक होता है। तो वो इस हालत में जो फोल्ड होता है आगे से खींची हुई हालत बन जाती है, तो वो स्ट्रेच में जाके तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पे मेडिकल इस्लाह में हम कहते हैं खास तरह पे ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, टेंडर पॉइंट बन जाते हैं, तो वो फिर दर्द का शिकार करते हैं। और इसकी एक दूसरी भी वजह सामने आती है कि ये गर्दन दर्द सिर्फ गर्दन या ये गर्दन के पीछे वाले जो पट्टे हैं यहाँ तक महदूद नहीं रहता है, गर्दन की वजह से या गर्दन के जो पट्टे हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में सर दर्द की शिकायत भी देखी गई है। और वो यही शायद सोचते हैं कि सर में दर्द है, हम अक्सर ये कह देते हैं कि सर में दर्द है, और काफ़ी दफ़ा ये भी देखा गया कि सर का जो दर्द है उसकी असल वजह जो है आपके जो मसल्स हैं गर्दन के जो पट्टे हैं उसमें होती है, और वो पेन जो है रेफर होके आपके जो है सर के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो मुतासर कर रहा होता है।
बिल्कुल, ये पूरी जो है डॉक्टर साहब लंबी बहस है कि कैसे जो है एक जगह पर अगर आपको मसला है तो उसका दर्द जो है दूसरी तरफ जाना बारह, इसमें भी इंशाल्लाह किसी ने बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये तस्वीर जो है,
हाँ, इसमें भी देखें जो सिटिंग पोस्चर है, जो बैठने की हालत है, वो एक तरफ उन्होंने दिखाया हुआ कि मसल ये गलत है और दूसरी तरफ उसको मुनासिब अंदाज में बताया गया कि इस हालत में बैठें। पहली तस्वीर में देखें दाई साइड पे हम बात करेंगे जो है वक्फे के बाद जो कुर्सी पर किस अंदाज में बैठना है। उन्होंने पीछे जो है कमर के पीछे एक फोल्ड करके एक जो तौलिया नमा या मसल कोई भी चीज़ आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं वो रखी हुई है। इसका जो है असल मकसद ये होता है कि आपकी जो गर्दन है या उसके नीचे रीढ़ की हड्डी है वो उसकी जो एक स्ट्रेटनिंग है वो एक खास हालत में जो जाविया है उसका तबीयी जाविया वो बरकरार रहे।
ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह जो है कैसे बैठना है सही तरीके से, क्या उसके जाविया और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। यहाँ पर एक छोटा सा हमने वक्फा लेना है तो चलते हैं हसन के पास। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और बहुत मुफीद बातें आप लोगों की चल रही हैं और हम भी बहुत गौर से सुन रहे हैं वैसे आप लोगों की बात। और चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर। सुबह के 7 बजने वाले हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक और प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी हम लोग तेहरान स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और बात हो रही है हम लोगों की इसके बारे में, यानी डॉक्टर साहब की इस बारे में बात हो रही है कि कैसे सही तौर से बैठा जाए और यानी आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए आम हालात में, क्योंकि हर काम के वक्त बहुत ही ज़्यादा अहम रहता है वरना आगे जाके मसाइल खड़े हो सकते हैं। एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो इस हवाले से खुसन नौजवानों में ये चीज़ बहुत देखी जाती है, ड्राइव करते वक्त
ठीक
वो बिल्कुल अपनी सीट जो है ड्राइवर की सीट वो इतनी लिटा देते हैं कि वो जो है वो बस उसके बल पे खड़े यानी बैठे रहते हैं स्टीयरिंग व्हील के, और उसी को बहुत स्टाइल समझते हैं। अगर उनसे कह दो कि भाई सीट सीधी कर दो ये कमर के लिए तक यानी मुनासिब नहीं है तो वो उनके यानी उनको समझ में ही नहीं आती, वो कहते हैं बूढ़ों के लिए वो सीधा बैठना। इसके बारे में आप क्या,
ये वही चीज़ है डॉक्टर साहब जो आप अभी जो है बताने लगे हैं कि बैठना जो है कुर्सी हो वो गाड़ी की सीट है तो कैसे सही तरीके से बैठा जाए।
देखिए एक बीमारी है डिस्क हर्निएशन या डिस्कोपैथी हम इसको कहते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी का जो कमर वाला हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा इसमें ये ज़्यादा पाई जाती है, और इसका जो रिस्क फैक्टर होते हैं जिन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है ये चीज़ तो उनमें ये ड्राइवर हजरात जो ज़्यादा जो है ड्राइव करते हैं ज़्यादा देर तक ड्राइव करते हैं लंबे सफ़र पर रहते हैं तो उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, डिस्क हर्निएशन जो है आम देखी जाती है उन लोगों में। तो इसकी वजह यही होती है कि उस खास हिस्से में गलत तरीके से बैठने की वजह से उस खास हिस्से में जो है उनका वो पोस्चर जो है वो ठीक नहीं रहता, एक खास नुक्ते पर दबाव आता रहता है तो उसकी वजह से एक खास वक्त के बाद जो है वो इस बीमारी का शिकार होते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब बड़ा सादा सा सवाल पूछूंगा, पता नहीं ये सवाल सही भी है ये नहीं है, मसलन अगर हम लोग जो कहे हमें बचपन में माँ बाप कहते थे कि जी आप जो कमर को खम करके बैठते हो ना सीधे करके बैठो ठीक है। अच्छा इसके बारे में सुनी सुनाई बात है, वो ये कहते हैं कि जी अगर आप जितना आप खम करके बैठते हो तो रीढ़ की हड्डियों के दरमियान जो वो जो डिस्क आपने कहा जो छोटे छोटे तकिए से हैं वो कहते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ऐसा होता है, इसका ताल्लुक है?
बिल्कुल इसका इस चीज से ताल्लुक है। अच्छा। और इसी चीज को हम जो है वो जो मैंने मेडिकल डिस्क हर्निएशन कहते हैं, और एक दूसरी बीमारी सामने आती है स्पाइनल स्टेनोसिस जो है आपका जो हरामग्स है उस पर भी दबाव आ रहा होता है। रीढ़ की हड्डी की जो है एक तबी जो है उसमें शक्ल है उसमें जाविये होते हैं, उसमें 4 कर्व हैं, ऊपर गर्दन वाला जो है वो सामने की तरफ होता है, फिर जो है आपको वो काइफोसिस है सीने वाला जो पोर्शन है, फिर लुम्बर रीजन है उसमें, फिर जो है
पेट वाला जो
बिल्कुल आगे। तो अब जैसे ही आप गलत तरीके से बैठेंगे तो ये जो कर्व है नॉर्मल जो कोस्तार जो जावी है ये मुतासर होते हैं, और जो ही ये मुतासर होंगे उस नीचे जो डिस्क है उस पर एक जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ेगा, उस दबाव की वजह से जो है फिर वो डिस्क पर मुख्तलिफ तरह के जो असरात सामने आते हैं और मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां रूनमा होती हैं उसमें जो बीमारी का बाइस बन रही है।
डॉक्टर साहब ये तस्वीर हम दोबारा
ये देखें, ये तस्वीर है मुख्तल तरह के जो बैड पोस्चर जिस तरह हसन साहब बात कर रहे थे अभी कि मसलन ड्राइविंग करते हुए वो एक खास अंदाज में बैठते हैं जो ठीक नहीं है, और ये भी इस तस्वीर इन तस्वीर में भी जो है यही चीज़ दिखाई गई है कि मुतालिया करते हुए जो है आप इस इन तरह के जो है वो पोस्चर हैं या हालते हैं इससे जो है परहेज करें।
अच्छा डॉक्टर साहब वैसे वो जो ऊपर वाली जो है तस्वीर वो जो काफी
उन्होंने मसल एक जो है मजाक पैदा करने के लिए ये चीज दे दी है।
एक बार इत्तेफाकन डॉक्टर साहब होते हैं जब नींद आ रही हो ना गाड़ी में तो जब आपकी आंखें ना खुल रही हो तो उस टाइम पे जो है बहरहाल मैं कभी कभार इस तरह करके बैठा हुआ होता हूँ बिल्कुल स्टेयरिंग को चुपक के, क्योंकि वो नींद आ रही होती है और समझ नहीं आ रही थी आगे भी नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब फिर थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि कैसे जो है ठीक तरीके से हम लोग बैठ सकते हैं, कोई है कुछ टिप्स हैं आपके ख्याल में?
मुतालिया करते हुए जो है बाज़ लोगों को ये आदत होती है कि लेट के मुतालिया करते हैं,
ठीक है,
बाज़ लोग उल्टा लेट के मुतालिया करते हैं
जी बिल्कुल,
बाज़ लोग जो है मसल बेड पर बैठे हुए हैं जो है वो एक खास हालत में मुतालिया करते हैं,
एक तकिया रख लिया पीछे और जो है बैठ के, ठीक,
تو یہ مختلف جو حالتیں ہیں یہ کوئی بھی حالت مناسب نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
بہتر یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے زیادہ دورانی کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو آپ ایک ایسی کرسی کا استعمال کریں جو طبی معیار کے مطابق ہو,
مطابق
جس میں جو ہے نارمل کرو ہوں, اس کے مسئلے جو طبی جو ساخت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس میں کرو ہوں. یہ لیٹنے کی پوزیشن سوتے ہوئے بھی جو ہے, اب اس طرف جو ہے جب گردن میں ایک کرو ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
ایک زاویہ ہوتا ہے. اب جو ہے جو بائیں سائڈ پہ جو تصویر ہے اس میں اس زاویے کو جو ہے وہ دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس دباؤ سے بچنے کے لیے, اس زائد اثر سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے گردن کے نیچے کوئی چھوٹا سا جو ہے تکیہ.
ڈاکٹر صاحب, یہاں پر جو ہے گردن کے نیچے جو ہے ایک تکیہ یا گول سا وہ تولیہ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن سر کے نیچے نہیں ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ گردن کا جو کرو ہے, جو کوس ہے گردن کی, اس کو سمجھیں.
دیکھیں بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ آپ کی گردن جو ہے نیوٹرل پوزیشن پہ ہو, یعنی ایسی حالت جس پہ جو ہے آپ کے اس حصے پر جو ہے وہ زیادہ دباؤ نہ پڑے. تو اسی کو چیز, کیونکہ طبیعی کرو جو ہے وہ سامنے کی طرف ہوتا ہے, آگے کی طرف
نکلا
ہوا, اسی کے نیچے مسئلہ ایک چیز رکھ دی جاتی ہے, اگر فرض کیا اس کو ہٹا دیں تو اوپر سے جو ہے وہ دباؤ پڑے گا, وہاں پہ جگہ خالی رہ جائے گی, وہ دباؤ پڑے گا,
کیونکہ سر بھی نیچے لگ رہا ہے, کمر بھی نیچے لگ رہی ہے, گردن جو ہے ہوا میں رہ گی.
بالکل
ٹھیک ہے.
تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ جو ہے نا اس طرح کے تکیوں کا استعمال, اگر تکیہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہو
جی جی
تو وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو, پھر وہ مخالف سمت میں جو ہے وہ دباؤ ڈالے گا.
صحیح ہے, ٹھیک.
تو اس کے علاوہ جو ہے کرسی کا جو مسئلہ بیٹھنے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ کرسی جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہوئے ایک ایسی کرسی جو ہے منتخب کریں جو طبی معیار کے مطابق ہو, اس میں جو ہے طبی طور پر اس میں بھی کرو ہوں. اگر فرض کیا آپ کے پاس ایسی کرسی نہیں ہے تو آپ کمر کے پیچھے کوئی تکیہ رکھ کے جو ہے وہ گزارا چلائیں.
جی ڈاکٹر صاحب, کہتے ہیں کہ یہ جو جہاں پر آپ نے بازو اپنے رکھنے ہیں نا, وہ اس کے لیے بھی کچھ خاص پوزیشن ہوتی ہے, یہ جو ڈاکٹر صاحب جس صوفے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے,
یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب یہ تبدیل
کرنا پڑے گا. اس پہ جو ہے بازو نیچے کی طرف جاتے ہیں, وہ بازو مثلا ہموار سطح پہ مثلا ویسے ہی ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, اس کا کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں, تو اس میں یہ کوشش کریں کہ کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے اور آپ جب مثلا وہ LCD ہے مانیٹر ہے, تو وہ آپ کی آنکھیں اور وہ تقریباً ایک ہی زاویے پہ
لیول,
تاکہ مثلا آپ کو گردن کو زیادہ جھکانا نہ پڑے یا مثلا اوپر کی طرف نہ لے کے جانا پڑے. کرسی کا جو جب انتخاب کریں تو ایسی ہو جو جس کو آپ اس کی جو ہائٹ ہے اس کی جو اونچائی ہے اس کو آپ خود ایڈجسٹ کر پائیں.
صحیح, ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, گفتگو کو آگے چلائیں گے. یہاں پر چھوٹا سا ہم نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفہ نہیں لینا بلکہ حسن کی کچھ ہے, حسن بھی کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں وہ سنتے ہیں. جی حسن,
بہت بہت شکریہ. ایک چیز بلکہ ہمیں پوچھنی تھی وہ اس حوالے سے ہے کہ یعنی بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں شاید 60-70% جگہوں پہ مناسب کرسیاں ہوتی ہی نہیں.
بالکل.
تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو کیا پوسٹر وہ اپنانا چاہیے, اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن پہلے چلتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ناظرین جو ہم جو ہے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں, اور بہرحال اس کے لیے ہم لوگ خرچ بھی کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک, اور اس میں ایک جو ہے وہ ہے مختلف کپڑے. کپڑے بہترین ہونے چاہیے, خصوصاً خواتین کو زیادہ فکر رہتی ہے. مردوں کا تو یہ رہتا ہے کہ وہ بیچارے جو بھی ان کو پہنا دو پہن لیتے ہیں, اور زیادہ اتنا کوئی خرچہ بھی ان کا نہیں ہوتا ہے. اور بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن سب سے مہنگا کپڑا آپ کے خیال میں, اور خوبصورت کپڑا یعنی بلکہ مہنگے سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ آپ کے خیال میں کون سا ہے؟ یقیناً آپ کا نام ریشم اس طرح کے بہت سارے چیزوں کی طرف جائے گا. خصوصاً ریشمی کپڑے جو ہوتے ہیں ان میں جو مختلف ان کی نوعیت ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے. ایک تو خود وہ جو ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے, اور اس میں مختلف قسم کے یعنی ریشم بنائے جا رہے ہیں. جنوبی امریکہ میں اگر آپ جائیں تو کوالٹی میں تو کافی فرق ہوگا بنسبت عام یعنی دوسری جگہوں پر اگر آپ دیکھیں ان ریشموں کو. تو اس میں جنوبی امریکہ میں تو یہ کام ہو رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی یہ کام کیا گیا ہے کہ جب ریشم کے یعنی آپ سمجھیے کہ دھاگے جب بنتے ہیں تو اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا, تقریباً سفید رنگ کے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ الگ سے رنگ کرنا پڑتا ہے. اب کیمیکل مادے یا دوسرے قسم کے مادے اگر استعمال کیے جائیں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ کوالٹی ان کی جو ہے جو ان کی کہہ سکتے ہیں کہ اندر موجود اندرونی جو صلاحیت ہوتی ہے خوبصورت ہونے کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو ایک کام جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود جو کیڑے تھے ان کو کیمیکل مادہ खिलाया गया। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ने ये काम किया है कि बॉम्बाइक्स मोराई जो है एक किस्म का कीड़ा है उसको खिलाया गया, एजोडाइज के यानी मादे उसको खिलाए या पिलाए गए, जो भी बहरहाल उतने छोटे में नज़र भी नहीं आता होगा कर क्या रहे। तो उसमें उन्होंने जो खाना शुरू किया तो रंगीन किस्म के यानी कह सकते हैं रेशम के कपड़े वो बनाने लगे। इसमें देखा गया कि कोई ज़्यादा बुरा असर भी उनके बदन पे नहीं पड़ा और वो केमिकल मादे ऐसे मादे थे जो आम हालात में यानी खाने के इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो इस लिहाज से उसका ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ा बल्कि मुनासिब असर इस लिहाज से पड़ गया कि सस्ता भी पड़ गया। मेरे ख्याल में थोड़े दिन के अंदर, वैसे खुर्रम भाई एक आइडिया है कि कीड़ों को डिज़ाइन भी खिला दी जाए तो वो डिज़ाइनदार कपड़े उधर से,
लगता है कि कीड़ों को कंप्यूटर के आगे बिठाना पड़ेगा, एक टैबलेट उनके लिए लेना पड़ेगा,
उनके वो कुछ कुर्सी भी सही तौर से बनानी पड़ेगी मेरे ख्याल में उनको, वरना परेशानी पेश आ जाएगी। एक और मौजू आपको हम बताएंगे, चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर माइक मैकेन्स बरतानिया के एक डॉक्टर हैं और उन्होंने तहकीक की है मुख्तलिफ खानों के बारे में, गज़ाइयत के उमूर के माहिर हैं और उन्होंने अपनी उम्र भर सर्फ कर दी खुसूसन शहद के बारे में तहकीक करने में, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ। उन्होंने एक काम जो किया है वो ये है कि शहद के मुख्तलिफ जो खवास होते हैं उसके बारे में बताया। कई मज़ेदार चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो ये है कि क्योंकि शहद जो क्योंकि फूलों से लिया जाता है, वैसे आम हालात में वरना शक्कर भी खिलाई जाती है उसको, तो वो जो है जो फूलों से लिया जाता है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुफीद होता है कि जो आपका निज़ाम इन्हज़ाम है उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, क्योंकि ख़ुद वो जो मुख्तलिफ रिएक्शंस ख़ुद शहद की मक्खी के पेट में होते हैं वो काफ़ी हद तक उसको तब्दील कर देते हैं, उसकी नौइयत यानी आम शक्कर को तब्दील कर देते हैं एक बहुत ही मुफीद शक्कर में। दूसरी चीज़ जो इस हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप चाय के साथ या दही के साथ अगर इस्तेमाल करें शहद तो वो बहुत ही एक यानी पुरसकून मादा है आपके बदन के लिए, और इसमें ये होता है कि ये तो आप खा लेते हैं उस वक्त स्ट्रेस भी आपका दूर हो जाता है, रात को आराम से सो सकते हैं। वैसे दही वाला किस्सा वो शाम वाम को खाइएगा, रात को मतलब चाय में या गर्म पानी में अगर मिला के आप पिएँ तो इस लिहाज से मुफीद होगा, स्ट्रेस को आपको दूर कर आपके दूर करेगा, रात को आप आराम से सो सकेंगे और बदन को फिर से फुर्सत मिलेगी, वक्त मिलेगा उसको कि आके बदन सारे वो जो सेल्स जो यानी बहुत ही ज़्यादा तनाव में थे उनको आके ठीक करें। एक और जो बहुत ही अहम जो है खसूसियत है शहद की वो ये है कि आम शक्कर से बहुत मुख्तलिफ होता है, यानी बदन में होता ही है कि आम शक्कर आप लेंगे तो ये होगा कि दिमाग को और ज़्यादा शक्कर की तरफ रुझान बढ़ जाएगी, लेकिन ये उस सर्कल को बिल्कुल तोड़ देता है और दिमाग में एक सुकून की कैफियत सी हो जाती है और उसमें दिमाग ये उसको यानी अलाइम उसको मिलने लगते हैं कि अब हमें शक्कर की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं या जो दीगर मसाइल का शिकार हैं अचानक मिठास की तरफ उनका रुझान हो जाता है, उससे वो दूर हो जाते हैं। बहुत सारी और चीज़ें रह गई हैं लेकिन इंशाल्लाह फिर आगे प्रोग्रामों में हम बताएंगे, चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन, बहुत मुफीद आपने बातें बताई। डॉक्टर साहब वक्त महदूद है, मुख्तसरन आप क्या कहना चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुर्सी पे बैठना भी है, पढ़ना भी है और दर्द भी है?
मुनासिब तो यही है कि उसके लिए कुर्सी मुनासिब हो,
ठीक है,
और फिर जिन लोगों ने ज़्यादा देर तक जो है मुतालिया करना, ज़्यादा देर तक कुर्सी पे बैठ के काम करना है तो वक्फे वक्फे के बाद जो है तकरीबन आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद, एक ही हालत में मुसलसल लंबे दौरानी तक जो है वो बैठने से परहेज़ करें,
ठीक है,
और कोशिश करें कि आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद जो है वो एक मुनासिब किस्म की जो है जो मुख्तलिफ तरह की वर्जिशें हैं,
ठीक है,
उनको जो है कर लें,
थोड़ा बदन को जो है वो गर्म कर लें,
थोड़ा सा हला लें उनको, मसलन बर्तन को स्ट्रेच दे लें,
ठीक,
या मुख्तलिफ जावियों पर जो है गर्दन को घुमाएं,
ठीक है,
तो थोड़ा सा मसलन चल फिर लें अगर दफ्तर में है तो इससे बहुत सारे जो है मसाइल से बचे रह सकते हैं। आप कुर्सी की बात कर रहे थे तो कुर्सी में एक तो उसकी जो जिस तरह हमने ऊंचाई की बात की वो मुनासिब होनी चाहिए, उसके बाद इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि कुर्सी पर बैठे हुए आपके जो पांव हैं वो आपके वो जमीन पर होने चाहिए। अगर फर्ज किया कुर्सी की ऊंचाई ज्यादा है तो उसको पांव जमीन पर नहीं पहुंच रहे तो नीचे उसके कोई जो है स्टूल टाइप जो है छोटा मोटा वो रखा जा सकता है, और एक जाविया जो है आपका धड़ का और रान का जाविया ये तकरीबन 90 दर्जे हो
होना चाहिए।
और ये भी बेहतर है कि अगर आपकी जो है हिप कूल्हे की हड्डी है आपके घुटने जो है उस कूल्हे की हड्डी की जो लाइन है उससे जरा नीचे हो,
थोड़े से घुटने नीचे
हो तो उससे जो है वो काफ़ी उस पे जो है काफ़ी बेहतरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत लंबा मौजू है मुझे पता है, और बड़ा मुश्किल होता है कि इतने बड़े मौजू को जो है आके चार जुमलों में जो है ख़त्म करना, लेकिन वक्त महदूद होता है। डॉक्टर साहब, हमारा हफ्ते का मौजू चल रहा है दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना, इसके बारे में एक जुमला बस हमें बता दें, वक्त बिल्कुल कम हमारा।
देखिए, एक हकूकुल इबाद होते हैं,
ठीक है,
और हकूकुल्लाह होते हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मसलन हकूकुल्लाह को तो खुदा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं वो बंदा ही माफ़ करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, बहुत खूबसूरत बात की आपने, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी जो है हम आपको ज़हमत देंगे कि हमारे प्रोग्राम में आएँ और हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद बातें और अच्छी बातें करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, आप लोगों ने डॉक्टर असदुल्ला अरसलान की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, आपको पसंद आई होगी। अब वक्त हुआ है एक खूबसूरत सा तराना जावेद असकरी साहब की आवाज़ में, चलते हैं सुनते हैं।
नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ, हमारे साथियों में बताएंगे हमारा राबता हुआ है टेलीफोन से या नहीं, तो उस वक्त हम कुर्सी के बारे में बता देंगे। ये काफी मेहनत पड़ी है जो डिजाइन इन्होंने की है,
बिल्कुल
ये हर चीज इसमें गलत
बनाने वाले ने जो है दूसरों के हुकूक का पूरा पूरा ख्याल रखा है,
ख्याल रखा है। और उसमें एक और चीज जो होती है मेरे साथ वो ये है कि सारे ये जो माइक और वॉकी टॉकी जो लगी हुई है वो मैं टेक लगाता हूँ तो बंद हो जाती है,
बिल्कुल जारी बात है,
इसलिए मैं टेक भी नहीं लगा सकता, तो ये मजीद मेरे लिए एक और क्वालिटी है और मेरी सलाहियतों में।
क्या ख्याल है डॉक्टर असदुल्ला अरसलान को कहते हैं वो दोबारा आ जाए स्टूडियो में जो है और थोड़ा सा हमें बताएं।
काफी बहरहाल इस तरह की गुफ्तगू हम लोग जारी रहेगी, लेकिन यही छोटी चीजें होती है नाजरीन जो हम लोग दूसरों के हुकूक का ख्याल नहीं रखते और सोचते भी नहीं है, बस अपने फायदे का सोचते हैं। हो सकता है कुर्सी के बारे में हम लोग बात कर रहे हो, लेकिन इससे भी छोटी चीजें होती हैं जो वाकई हक़ुन्नास बन के सामने आ जाती हैं और हम लोग उसका ख्याल भी नहीं रखते, और पता जब चलता है कि खुदा न खास्ता हम लोग यानी मौत का शिकार हो जाएं तो हम लोग को उधर
जिंदगी गुजर जाती है। आप कहते हैं ना पलक चपकते हैं तो जिंदगी गुजर जाती है इंसान की। हसन, आपने प्रोग्राम शुरू में बड़ी अच्छी एक बात की थी कि जो बहुत नज़दीक हमारे जो लोग होते हैं वही हकूक का पामाल करते हैं, और उसमें एक जो दिलचस्प बात है वो ये है कि शायद उनको पता नहीं होता कि वो दूसरों के हुकूक जो उनके साथ घर में लोग रह रहे हैं उनके हुकूक को पामाल कर रहे हैं। ये बड़ी एक दिलचस्प और अजीब बात है।
फोन से रابطہ हम लोगों का हो गया है, मेरे ख्याल में बहुत मुख्तसर सा हम लोगों का रابطہ रहेगा। जाफरी साहब लाइन पर हैं और मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज सुबह को आपको हमने जगा दिया, लेकिन बहरहाल मौजू ऐसा है कि हुकूक के बारे में दूसरों हुकूक के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।
सवेरे को जागना भी हुकूक इंसान में ही फायदा होता है।
जी यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। यही मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो दूसरों के हुकूक होते हैं उनका ख्याल रखना क्यों ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए?
हसन, असल में मसला हमारी मैं का होता है। अगर हम हज़रत आदम से लेके खातिमुल अंबिया तक देखें और जनाब सैयद शोहरा की करबला देखें, तो जब मैं होती है तो इंसान के हुकूक पामाल होते हैं।
ठीक,
दूसरों के हुकूक पामाल उसी वक्त होते हैं जब हमारी मैं हमारे ऊपर हावी रहती है।
सही।
अगर हम मैं को छोड़ दें तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में फिर कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि हुकूकुल इबाद ही हुकूकुल्लाह है।
सही
जी,
मेरे नजदीक जब इंसान किसी के हक को मारने की कोशिश करता है तो उसमें मैं का अंसर ज्यादा आता है। क्यों ख्याल रखना चाहिए? आखिरत के लिए।
ठीक,
अगर आखिरत के लिए हम ख्याल रखेंगे तो हमें मैं खत्म करनी पड़ेगी।
सही।
अगर हम नफसानी ख्वाहिशात से दामन छुड़ाकर अल्लाह तबारक तआला के साथ मामला कर लें तो हमारी अवधि आसाइशें मौत के बाद भी अल्लाह करे कि हमारी कब्र मुनव्वर रहे।
सही,
इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। एक और सवाल मैं बहुत ही यानी मुख्तसर आप जवाब दीजिएगा, बस 20 सेकंड हम लोगों के पास वक्त है इतना हम कहें कि ये जो हम लोग दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हैं फौरी तौर पर उसका असर हम पर क्या पड़ता है?
सबसे पहले हमारी मैं मिट जाती है।
सही।
हमारा तकब्बुर मिट जाता है।
सही।
हमारा तकवा बढ़ जाता है, हमारे तस्किया नफ्स हो जाता है।
यकीनन,
क्योंकि जब हम किसी के हुकूक का ख्याल रखेंगे तो हमारे ऊपर जो असरात होते हैं हमें अल्लाह शनासी आ जाती है।
यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, माफ कीजिएगा बिल्कुल वक्त हम लोगों के पास नहीं है, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह।
बहुत खूबसूरत बात जाफरी साहब ने कर दी कि अगर दूसरों का हुकूक ख्याल रखेंगे तो इंसान का जो गुरूर है तकब्बुर जो है वो
खत्म हो जाएगा।
हमारा कल का मौजू जो है हसन मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को, वो ये डॉक्टर हुसैन अहमद को हमने दावत दी है प्रोग्राम में, और वो जेनेटिक्स के माहिर हैं, और वो ये बात करेंगे कैंसर और जेनेटिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है।
जी, तो हुकूक इंसान के हुकूक यकीनन खुदा के हुकूक से मुत्तसिल हो जाते हैं अगर हम लोग ख्याल रखें अपना और तज़किया करें अपने नफ्स का। हम इजाज़त दीजिए,
खुदा हाफिज़।